पिछले अध्याय में आपने देखा कि अयान जोया को परेशान कर रहा है, जबकि वेद और मानवी के बीच रोमांटिक पल है। इस अध्याय में वेदांत अपनी पत्नी रीना के सामने उसकी छोटी बहन करीना के साथ शादी करने की बात स्वीकार करता है। रीना घर छोड़कर चली जाती है, जबकि मानवी उसकी मदद करती है। वेदांत अपनी हरकत को सही ठहराता है और उसके परिवार वाले इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। नाउ नेक्स्ट। वेद और मानवी अपने कमरे में थे। पार्टी में जाना तो अब कैंसिल हो ही चुका था। मानवी को रीना की बहुत फिक्र हो रही थी। पिछले कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और रीना दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। मानवी को चिंता में देखकर वेद ने कहा, फिक्र मत करो, रीना को ले जाया गया है, वो ठीक है। हम दोनों किसी बहाने से घर से निकलते हैं, उससे मिलने चलते हैं। मुझे भी भाभी की फिक्र हो रही है। मानवी ने वही साड़ी पहनी हुई थी जो उसने पहले से पहनी थी। बालों का जूड़ा बनाते हुए उसने कहा, चलो फिर चलते हैं। दोनों जैसे ही नीचे पहुंचे, बलवंत मेहरा ने उन्हें देखकर पूछा, अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उनके चेहरे पर चिंता साफ छलक रही थी। वेद आगे बढ़ा, अपने डैड के पास जाकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं सब संभाल लूंगा डैड, अब फिक्र मत करें। बलवंत ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, उन्हें सब समझ आ गया था। मानवी ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और दोनों घर से बाहर निकल गए। वेद गाड़ी चला रहा था और मानवी खिड़की से बाहर देख रही थी। रात की हवा धीरे धीरे चल रही थी और सड़क पर अब सन्नाटा उतरने लगा था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वेदांत ऐसा कर सकता है, मानवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वेद ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता वो असल में कैसा आदमी है। अगर मैं कहूं कि हम मेहरा खानदान के लड़के ऐसे क्यों हैं तो शायद बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में कैरेक्टर नाम की चीज नहीं है। वेद असल में अपने आप को कह रहा था, क्योंकि मानवी से पहले उसके कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन थे। वो कुछ पल रुका, फिर ईमानदारी से बोला, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ मानवी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ वफादार रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मेरी पिछली गलतियों के लिए माफ कर दो। वेद के लहजे में पछतावा साफ झलक रहा था। मानवी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, वेद, अभी ये वक्त हमारी बातों का नहीं है। मुझे रीना की बहुत फिक्र हो रही है। वेद ने सिर हिलाया और कहा, मेरी गौतम से बात हो चुकी है। उसने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, रीना ठीक है, वो रीता के पास है। थोड़ी ही देर में वेद और मानवी रीता के फ्लैट में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने छोटे से लिविंग रूम में कदम रखा, उन्होंने देखा कि रीना वहां बैठी रो रही थी। गौतम उसके सामने बैठा हुआ था और रीता उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मानवी और वेद भी उसके पास जाकर बैठ गए। वेद ने धीरे से कहा, तुम चाहो तो कोर्ट जा सकती हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। रीना ने सख्ती से कहा, बस मुझे उस आदमी से तलाक चाहिए, मुझे उसकी कोई संपत्ति या पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, उसने आह भरती हुए कहा। उसे लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। मेरी ही बहन ने मेरा घर उजाड़ दिया और अब मुझे इन दोनों से बेहद नफरत हो रही है। आधी रात तक वेद और मानवी रीना के पास बैठे रहे। गौतम भी वहीं था। रीता और मानवी ने खाना बना लिया और सभी ने साथ में खाया। गौतम ने गंभीर स्वर में कहा, रीना की यहाँ मौजूदगी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। रीना ने वेद से कहा, भैया मदद कर सकते हो? वेद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ क्या हुआ बोलो। कहीं भी छोटी मोटी नौकरी दिलवा दूंगा, तुम्हें उसे कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ बस यही, रीना ने कहा। वेद ने धीरे कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अभी तुम आराम करो, कल हम लोग बात करेंगे। वहीं वेदांत और करीना अपने कमरे में थे। करीना शॉर्ट नेट नाइटी पहने बाथरूम से निकली और वेदांत बेड पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुराया और उसके पास बैठ गया। उसने करीना को गले से लगा लिया। वेदांत ने कहा, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, अब हमारा रिश्ता जायज है। करीना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और एक निजी पल साझा करने लगे। उस समय वे पूरी तरह अपने प्यार और एक दूसरे की मौजूदगी में डूब गए और वो सब कुछ भूल गए कि बाहर कितने लोगों के दिल दुखा चुके थे। आर्यन बहुत परेशान था, सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया था। अब उसे जय की उतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि सानवी उसके साथ है, वो उसे संभाल लेगी। हालांकि आर्यन अब भी नाराज था कि सानवी जय को पुलिस स्टेशन तक ले गई थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात का यकीन था कि सानवी गलत फैसला नहीं लेगी। ऑफिस पहुंचकर वो अपनी चेयर पर बैठा था। सामने रखी फाइल को वो बार बार देख रहा था, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रहा हो। तभी दरवाजा खुला, शिव मेहता अंदर आया। उसने सामने की कुर्सी खींची और बैठते हुए बोला, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? आर्यन ने चुपचाप वो फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। शिव ने फाइल खोली, कुछ देर तक देखा, फिर लंबी सांस ली। मैंने जगत से भी कहा था, अब तुम्हें भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, शिव की आवाज में गंभीरता थी। जगत के पिताजी ने जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया होगा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखता रहा। शिव ने धीरे से फाइल बंद की और कहा, असल में जगत ने अपनी मौत से पहले कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए थे। वो चाहता था कि अपने शेयर में से 5% हिस्सेदारी अपनी बहन जेसिका के नाम कर दे। तब उसने मुझसे भी बात की थी, पर मैंने उसे रोक दिया था। कुछ पल चुप्पी छाई रही, फिर आर्यन बोला, अब जब उसके सारे मामले मैं हैंडल कर रहे हो और ये उसकी आखिरी इच्छा थी, तो शायद अब इसे पूरा कर देना ही सही होगा। एक बात कहूँ आर्यन, शिव मेहता ने धीमे स्वर में कहा, फिलहाल इस मामले को भूल जाओ। मैं तो कहता हूँ ये फाइल घर ले जाओ, ऑफिस में ये किसी को दिखनी नहीं चाहिए। आर्यन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शिव ने आगे कहा, जेसिका को 5% शेयर मिलने का मतलब है कि असल में विक्रांत को वो हिस्सेदारी मिल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो लोग ऑफिस में दखल देना शुरू कर देंगे। मैं मानता हूँ कि 5% से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका ऑफिस में आना जाना तुम्हारे लिए परेशानी बन सकता है, खासकर अब जब वो लोग जय की कस्टडी के केस को लेकर पहले से एक्टिव हैं। आर्यन ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। यही तो मैं सोच रहा हूँ, उसने कहा, पहले जब जय की कस्टडी का मामला नहीं उठा था तब मैं सच में चाहता था कि जेसिका को वो शेयर दे दूं, आखिर वो जगत की बहन है। लेकिन अब, वो थोड़ा रुका, अब वक्त सही नहीं है। शिव ने हल्के से सिर हिलाया। आर्यन ने फाइल उठाई और बोला, ठीक कहा तुमने, मैं इसे घर ले जाता हूँ। अभी इसे किसी को दिखाने का मतलब और मुसीबत बढ़ाना होगा। विक्रांत के ऑफिस में जेसिका और विक्रांत आमने सामने बैठे थे। जेसिका अपने फोन पर किसी नंबर को डायल कर रही थी। हेलो इंदर, उसने शांत आवाज में कहा, मैं जय से मिलना चाहती हूँ। सोच रही थी अगर वो तुम्हारे पास हो तो उसे बुला लो, मैं वहीं आ जाऊंगी। फोन के दूसरी तरफ से इंदर की आवाज आई, वो आज नहीं आएगा। जेसिका कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराने की कोशिश की, कोई बात नहीं, जब वो तुम्हारे पास आए तो मुझे बताना, मैं खुद आ जाऊंगी। इंदर कुछ कहना चाहता था मगर उसने धीरे से ठीक है कहकर कॉल काट दिया। फोन रखते ही जेसिका का चेहरा उतर गया। विक्रांत ने उसे गौर से देखा, क्या हुआ? जेसिका ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, जय आर्यन के घर में है और आर्यन ने उसे बाहर जाने से मना किया हुआ है। विक्रांत ने भौहें चढ़ाई, तो अब? जेसिका की आंखों में सख्ती उतर आई, अब आर्यन चाहे जो करे मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जैसे हर हाल में मिलूंगी, बस देखना कैसे।